तो सुत गोस्वामी इसके पहले यह वर्णन किए हैं कि धर्मों पर प्रवचन करते करते वह काल आ गया जिसे विद्वान लोग उत्तरायण कहते हैं, और मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले, अपनी इच्छा से शरीर त्यागने वाले भक्त जन, योगी जन जिस काल की प्रतीक्षा करते उत्तरायण काल आ गया। उस समय भीष्म पितामह अपनी बिखरी हुई वाणी को समेट लिए, वाणी बिखरी थी, अनेक विषयों का वर्णन कर रहे थे, जैसे वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्म, अनेक प्रकार के धर्मों का निरूपण कर रहे थे, लेकिन इस बिखरी हुई वाणी को समेट लिए। यहां समेटने का अर्थ है अब दूसरा कुछ बोलना बंद कर दिए, केवल भगवान के विषय में बोलेंगे। तो सुत गोस्वामी एक बहुत ही अच्छा शब्द उनके लिए दे रहे हैं, सहस्रणी। सहस्रणी का अर्थ है सहस्र रथियों को अपने बस में रख, जो महान धनुर्धर महारथी हजारों रथियों को अपने कमांड में रखता है तो उसको सहस्रणी कहते। सहस्रणी का अर्थ है सहस्र वाला, हजार वाला। तो जिस प्रकार भीष्म पितामह हजारों रथियों को अपने नियंत्रण में रखते थे, इस तरह से उन्होंने अनेक विषयों में फंसी हुई वाणी को एकाग्र कर लिया और भगवान की धारणा किया। क्या धारणा किए? कृष्ण में अपनी वाणी को, अपनी मति को लगा दी, मन को लगा दी भगवान कृष्ण में, जो वहीं पर थे और भीष्म पितामह के पास खड़े थे। भीष्म पितामह का आग्रह सुन करके भगवान वहीं परम प्रसन्न मुद्रा में खड़े थे। सुत गोस्वामी कहते हैं, कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे। श्री कृष्ण आदि पुरुष है, कहा गया है विमुक्त संगम मन आदि पुरुष है। आदि पुरुष समस्त विश्व के जन्मदाता हैं श्री कृष्ण, सबका प्रारंभ कृष्ण से होता है। हरे कृष्ण। वैसे भीष्म पितामह का मन सदा भगवान का ही चिंतन करता था, लेकिन यहाँ धारणा का अर्थ है जिन विषयों का वे वर्णन कर रहे थे तो अनेक दृश्यों का उन्हें स्मरण हो रहा था वर्णन करने में, वहां से मन को पूरा पूरा समेट लिए और भगवान श्री कृष्ण के सुंदर श्री विग्रह में, स्वरूप में अपने मन को अस्थिर किए। इसको धारणा कहते। मन को चारों ओर से हटा करके जब भगवान में लगाया जाता है तो इसको धारणा कहते। विशुद्ध धारणा थी उनकी। विशुद्ध का यहां अर्थ है एक तो अनवरत, ऐसा नहीं कि बीच बीच में और का भी स्मरण हो जाए। अगर बीच में और चीजों का स्मरण होता है तो धारणा है, लेकिन विशुद्ध धारणा नहीं। विशुद्ध धारणा का अर्थ है कृष्ण के अतिरिक्त या कृष्ण की लीलाओं के अतिरिक्त अन्य की कोई स्मृति नहीं हो रही थी। तो इस विशुद्ध धारणा से क्या हुआ? भीष्म पितामह का अशुभ नष्ट हो गया। अशुभ का क्या अर्थ है? अशुभ का अर्थ है अन्य विषयों में मन का चले जाना, उनके लिए यही अमंगल था। युद्ध के समय में भी चित जाता था युद्ध करने के लिए, और इस समय भी जो वर्णन कर रहे थे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य विषयों में मन का जाना, चाहे वो किसी तरह से वर्णन करने के लिए या शिक्षा के लिए या सत्संग में भी, अगर अन्य बातों का वर्णन होता है तो यह अमंगल है। तो उनका अमंगल नष्ट हो गया, उनका मन निर्बाध गति से भगवान में लग गया। इसीलिए आगे कहा गया है कि विमुक्त संगम मन, उनका मन मुक्त हो गया। विशुद्ध धारणा से जब आदमी भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है तो ध्यान इतना आनंदमय होता है, उसका मन सुख का अनुभव करके अन्य विषयों में जाता ही नहीं। और धारणा कोई मानसिक नहीं कर रहे थे, सामने भगवान थे, अतः धारणा करने में उनके मुस्कुराते मुख को देखना, उनके अलक को देखना, कुंडल को, चार भुजाओं को, पीताम्बर को, इसके लिए बहुत कठिन काम नहीं है धारणा करना। यही है, एक तो विशुद्ध धारणा का अर्थ हम लोगों के लिए अर्थ है कृष्ण की धारणा, लेकिन भीष्म पितामह का की विशुद्ध धारणा जो है वही है कि अनवरत, अनवरत विशुद्ध धारणा। कहां धारणा किए थे? कृष्ण में, लसत पीत पट में, परम सुंदर भगवान कृष्ण में जो आनंद घन है, परब्रह्म है, उनमें जो बहुत ही सुंदर पीतांबर पहने थे, उनमें जिनकी चार भुजाएं हैं उनमें, और वो भी पुरस्थिते सामने ही जो है, कोई कल्पना नहीं करना है मन को दौड़ा करके भगवान का चिंतन करें करें, सामने है। तो वे उसमें विशुद्ध धारणा हुई, विशुद्ध धारणा से उनका अशुभ अमंगल नष्ट हो गया, और उनकी दृष्टि पड़ते ही जब ही भगवान आए कुरुक्षेत्र में, तो भीष्म पितामह पर बड़े स्नेह से देखे, जानते हैं सर्वज्ञ ईश्वर की इनके शरीर में बहुत पीड़ा है, बाण धसे हुए हैं, तो भगवान उनके चरण पर, हाथ पर, मुख पर सब दृष्टि डाल रहे थे, और उनकी दृष्टि पड़ते ही सारा आयुध व्यथा अस्त्र के कारण जो व्यथा थी वो समाप्त। आंसू, शुद्ध गोस्वामी कहते आंसू का अर्थ तुरंत, दृष्टि पड़ते जाना दर्द समाप्त, ये भगवान के दृष्टि की विशेषता। हम लोग पढ़ते हैं कि मछली एक ऐसा जीव है जो अपने अंडे को स्नेह भरी दृष्टि से देख करके पोसती रहती है, अंडे बढ़ते हैं उसके देखने से। तो जब एक प्राकृत जीव में ऐसी स्नेह की शक्ति है, तो फिर सच्चिदानंद घन परब्रह्म भगवान स्नेह से जिसको देखें, उसका देह का दर्द खत्म हो जाए, कौन बड़ी आश्चर्य की बात है, तो बिल्कुल स्वाभाविक है। तद इच्छया तस्य श्री कृष्ण से इच्छया दृष्टया सुधा दृष्टया उनका आयुध श्रम सब चला गया, दुख चला, शरीर में बाण निकाला नहीं गया। ऐसा नहीं था कि भगवान कहीं से एम्बुलेंस मंगा करके और ले जाए, हॉस्पिटलाइज करें उनको तब दर्द जाएगा, बाण सज्जा पर ही सोए थे, लेकिन वो सज्जा कुसुम की सज्जा के समान हो गई भीष्म पितामह के लिए, विरोचित सज्जा थी। ऐसा महाभारत में लिखा गया है कि जब भीष्म पितामह गिरे युद्ध भूमि में, तो अर्जुन तो बाण मारे थे छाती में, पैर में, हाथ में, सब जगह, तो गिरे ऐसे तो बाण पर ही गिरे, सिर में नहीं मारे थे बाण अर्जुन, तो भीष्म पितामह का सिर लटक रहा था ऐसे, तो उनके आशय को समझ गए, उन्होंने अभिव्यक्त किया कि हमारे सिर को सिरोधान चाहिए, तकिया चाहिए। तो कैंप शिविर पास में ही था, दुर्योधन आदि दौड़े लाने के लिए, तकिया लाया जाए, तोशक लाया जाए, कई तोशक बिछाया जाएगा तो सिरहाना ऊंचा हो जाए, भीष्म पितामह नकारे। उन्होंने संकेत किया कि जिसने सज्जा दिया है वही तकिया देगा, अर्जुन समझ गए, अर्जुन बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति थे, तुरंत समझते थे क्या करना चाहिए। तो भीष्म पितामह के मस्तक में तीन बाण मारे बहुत जोर से, वे बाण पार कर गए मस्तक को और नीचे जाकर के उठा दिए सिर, बाण की सज्जा है तो तकिया क्या रुई का चाहिए, तकिया भी चाहिए बाण का, बाण सीधा हो गया मस्तक उनका, सज्जा के समानांतर। तो भी बाण सज्जा पर सोए हैं, वैसे तो वे देह से परे हैं, क्षत्रिय हैं, वैसे भी कम व्यथा का अनुभव करते हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि पड़ते ही सारी व्यथा चली गई।